Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
वार्म वेलकम विशाल।
थैंक यू राजेश जी। नमस्कार अमृत जी। थैंक यू।
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड वीक, सेंसेक्स क्लोजेस एट 78,956 एंड निफ्टी सेटल्स एट 24,139। इंडिया इंक विटनेसेस 195 डील्स वर्थ मोर देन $8 बिलियन इन जुलाई 2024 एंड ग्रोस डायरेक्ट टैक्स ग्रोज to more than 8 lakh crore rupees from April to August 2024, says a government report.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांक कमजोरी के साथ बंद, सेंसेक्स 78,956 पर बंद हुआ और निफ्टी 24,139 अंकों पर रहा। भारतीय उद्योग जगत ने जुलाई 2024 में $8 अरब से अधिक के 195 सौदे किए और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2024 तक सकल प्रत्यक्ष कर बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। और आज की पहली खबर, आज बाजार में बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 693 अंक यानी 0.087% की गिरावट के साथ 78,956 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 208 अंक यानी 0.85% के नुकसान के साथ 24,139 अंकों पर रहा। निफ्टी की 121 कंपनियां 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंची जबकि 31 में गिरावट दिखाई दी। बीएसई के व्यापक बाजार में मिडकैप सूचकांक लगभग 1% गिरा और स्मॉल कैप 1.2% फिसला।
सेंसेक्स एंड निफ्टी लॉस नियरली 1% एंड क्लोज द वीक अमिड ब्रॉड बेस्ड सेलिंग टुडे। एट द क्लोजिंग बेल द बीएसई सेंसेक्स केम डाउन बाय 693 पॉइंट्स और 0.87% टू क्लोज एट 78,956। The NSE Nifty lost 208 points or 0.85% to close at 24,139. In the NSE, 121 companies hit their 52-week high, 31 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell nearly 1% and the small-cap index dropped 1.2%. Only 7 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top gainers today were Titan 1.8%, HCL Tech nearly 0.6%, and Nestle India more than 0.5%. Conversely, the major laggards were HDFC Bank nearly 3.5%, Bajaj Finance, Tata Motors and Tata Steel lost more than 2% each. In sectoral indices at the BSE, consumer durables was the only sector that gained nearly 1.5%. In the 19 sectors that registered losses, commodities, financial services and telecommunications dropped nearly 2% and BankEx shed nearly 1.5%. The overall market breadth of the BSE was negative out of 4,026 companies. Shares of 1,266 companies advanced, 2,676 declined, and 84 remain unchanged.
और घरेलू बाजार में कमजोरी तथा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रुपया आज एक सीमित दायरे में रहा. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 83.97 रूपये के स्तर पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर दिवसीय कारोबार में रुपया 83.95 रूपये के स्तर पर खुला था. विशाल जी, बाजार का जो हाल हमने देखा, दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है, तो ये आपको क्या लगता है, मुनाफा वसूली की वजह से ऐसा हुआ कि इसके पीछे कुछ और कारण भी दिखाई देते हैं?
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा अमरीश जी, बैंकिंग, आईटी, टेलीकॉम, मेटल, ऑयल, गैस, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है. इन्वेस्टर्स जो है वो मुनाफा वसूली अपनी कर रहे हैं, यानी कि जो FII है उसका आउटफ्लो अभी भी जारी है, नंबर एक. नंबर दो, जो मिक्स सेंटीमेंट जिसे कहा जाता है वो मार्केट को मिल रहे हैं. अभी हाल फिलहाल हमने देखे भारत के जो महंगाई के आंकड़े आए वो आए, वो बड़े अच्छे आंकड़े थे, लेकिन उसके साथ जो IIP के जो आंकड़े आए उनसे कोई बहुत ज्यादा उत्साह बाजार में वो आंकड़े नहीं भर पाए. इसके अलावा जो थोड़ा सा मिक्स सेंटिमेंट जो ग्लोबल इंडिकेटर्स जिनको हम कहें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं, वहां से भी मिक्स्ड ही सेंटिमेंट है. ऐसा कोई बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है. और जो पिछले लगभग 3-4 हफ्ते से हम जो बात करते रहे हैं थोड़ा सा ओवर इवेल्युएशन की करेक्शन, जिसकी इवेल्युएशन की जो करेक्शन की बात जो चलती है, तो वो भी एक फैक्टर है, वो भी जारी है. और इन सब के बीच अगर 4 से 5 सेक्टर में जो बड़े इन्वेस्टर हैं, FIIs हैं, वो अगर मुनाफा वसूली शुरू करें तो थोड़ा सा लाल की तरफ बाजार का जो सूचकांक है वो जाता दिखाई देता है.
विशाल, टुडे द ब्लू चिप HDFC बैंक वाज डाउन 3.5% एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इंडिसेस डिक्लाइंड फॉलोइंग द MSCI रीबैलेंसिंग अनाउंसमेंट which stated that the bank weight would be increased in 2 separate tranches, contrary to the expectation of a single adjustment. How much was this contributing to the shed in the BankEx sector, which was down nearly 1.5%?
Overall, out of that 1.5%, you know, the contribution by the HDFC script in terms of, you know, being a laggard on today's market was somewhere around 3-4%, and that's a significant number. As you're pointing out, it was not expected. You know, what the investors were expecting was that this will be a sort of a single adjustment, one tranche adjustment, but now that it is coming in 2 tranches, the traders and the investors both, it looks like in the banking sector, felt like that it is the time to go ahead and, you know, book your profit again, as I was saying. And when we talk about the banking sector, just look at the overall consistency over the past few weeks. The banking sector has performed well over the past few weeks. In fact, both the private sector banks and the public sector banks seems to be performing, you know, in the green zone mostly in the last few weeks. That shows that it's not something which is from here onwards a downward slide. It is not. It is just a reaction to one of the important decisions which has been taken, and perhaps the market was expecting the decision to be something else. The decision is not as per the expectations. That is why we saw HDFC becoming a laggard today.
Okay, Vishal, today the decline was driven by a broad sell-off, as you pointed out, primarily in the banking, metals and auto stocks. Now, how much was the foreign funds outflows and mixed global market cues or trends contributed to the negative sentiment in the domestic equities?
Well, let's look at it this way, Rajesh. The FIIs and the DIIs, they're two important pillars in the market. Now, the FIIs do continue to, you know, keep on pumping money and then, book their profits as well when they seem fit. There is a cushion. When the FIIs usually are withdrawing money, we see mostly the trend is the DIIs don't do so. like domestic investors keep on putting money. But sometimes when they work in conjunction with each other, specifically in certain sectors, as we saw today, you know, sectors like metal, sectors like banking, auto, oil and gas as well, it seems that the impact of the FIIs withdrawing from the market, withdrawing the money in terms of booking their profits, sort of held sway over DIIs, you know, putting more money out there. So that is why we've seen this trend. And this is something which is not at all unusual. This is part and parcel of the, you know, daily trade on the indices. So this should not be a cause of concern at all. What should be really looked at by the investors is the two, three factors coming in. One, of course, is the over-evaluation part, something which the experts have been pointing out time and again, that there is a correction which is setting in the market. So be cautious about your positions which you have taken in the market in terms of the corrections which are going to happen. And two, the cues which are coming in, the global cues which are coming in, they're also really important, really significant as well. No strong positive, I would say, cues coming in from the global markets or the geopolitics as well. That seems to have piled upon the existing, you know, happenings within the market, like the HDFC case or the FIIs, you know, trying to book profits in certain sectors.
So, Vishal, जैसा आपने खुद ही कहा कि जो global markets हैं, उनका जिस तरह का performance रहा, तो कोई बहुत clear cut वहाँ से signal नहीं मिला. इसका असर भी भारतीय बाजारों के गिरने पर पड़ा.
जी, बिल्कुल. आप अमेरिकी बाजार की तरफ नजर डालें तो volatility वहाँ भी जारी है, लेकिन कोई खास पॉजिटिव इंडिकेशन वहां से नहीं आ रही है. कुछ आंकड़े खास कहीं और से नहीं आ रहे हैं. और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वहां से भी कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं आ रहे हैं. चाहे वो इसराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हो, या फिर मिडिल ईस्ट में बाकी ईरान को मिला लिया जाए. आजकल इसराइल और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है उसमें भी कोई पॉजिटिव बात बाहर निकल कर नहीं आ रही है. यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी एक कदम आगे यूक्रेन बढ़ा है, तो वहां भी कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं है, जिसका असर यूरोपीय बाजारों पर ज्यादा देखने को मिलता है. और फिर एक डोमिनो इफेक्ट के तहत उसका असर फिर जो है बाकी जो एशियाई बाजार हैं उन पर भी देखने को मिलता है. भारतीय बाजार में उतना ज्यादा नेगेटिव असर उन चीजों का नहीं होता, क्योंकि बार बार जैसे मैं कहता हूं कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, DIIs जो है आपके स्ट्रांग है, और जो इंडिकेटर्स है वो आपके स्ट्रांग है. लेकिन क्योंकि ये मिक्स क्यूज होते हैं, तो खासतौर पे FIIs के लिए ये एक सिग्नल इंडिकेटर होता है. शायद वो इंडिकेटर उन्होंने आज इस्तेमाल किया और कई सेक्टर्स में हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की.
वी ऑल्सो हैव लेटर इन द प्रोग्राम एशिया एंड यूरोपियन मार्केट्स डिटेल्स ऑन देम. फाइव मेजर एशियन इंडिसेस एंडेड इन द ग्रीन एंड ऑल थ्री ऑफ द यूरोपियन मेजर इंडिसेस ट्रेडेड इन द रेड. सो these are the mixed trends that we're talking about, and we were discussing also before the program that markets did not provide clear direction for the domestic indices.
Well, yes, Rajesh, sometimes it happens is that you know, both the European markets and the Asian markets, they have their own independent trends as well. And let's not forget that when we talk about these indicators coming in from one market to the other, it is not the entire one factor which impacts the you know, the trade in the market on a in a given particular day, be it the BSE, be it NSE, or be it Nikkei we're talking about, or the Hong Kong index, or the you know, US market as well. It is one of the contributing factors, but if that's too negative, then it tends to become the trend on the negative end. And if it is too positive, then it tends to become the trend on the positive side as well. The volatility right now in the past few weeks is more in the European markets, more in the US market. In the Indian market, you know, indices, we've seen some volatility in the past 2-3 weeks, but it has not been consistent. It's like it has gone down, but then it has stabilized. And then it has gone slightly up and then, you know, looked at the comfortable mark and stayed there as well. Today's case can be seen as the case where the markets are stable. There is a bit of a volatility. The, you know, the impact coming in from the cues from the global markets is just one factor. As I was pointing out earlier, the other factor is the evaluation part as well, you know, decisions like the one taken on the HDFC Bank. So all these contribute towards one fine particular day.
Okay. And also, very important was that the market, which has been climbing all walls of worries, has climbed the Hindenburg wall also. I don't want to get into the details of this, but what it has done is that it has instilled confidence in the retail investors and DIIs who are flush with money. At the same time, it has reinforced investors' confidence in the success on the buy on dips theory, or you can call strategy, which has been one of the main driving force of the bull run.
Well, yes, indeed. And the Hindenburg wall being climbed by the Indian markets on Monday is a very, very significant point. That shows the resilience of the market. That shows the strength of the market, the wisdom of the investors as well, that, you know, just one particular event will not be able to bring down...
erode the confidence.
Yeah, erode the confidence and bring down the market like a pack of cards. It is not going to happen in the Indian markets.
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के पांचों प्रमुख सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। जापान के निकेई में 3.3% की उछाल देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.12% ऊपर रहा। सिंगापुर के स्टेट्स टाइम सूचकांक में 0.7% की बढ़ोतरी दिखाई दी। हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% की वृद्धि के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक वहां गिरावट का रुख देखने को मिला। फ्रांस के कैक में 0.33% की कमजोरी दिखाई दी। लंदन का फुटसी 0.12% नीचे रहा, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.04% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। विशाल जी, यूरोप के तीनों ही बाजारों में गिरावट दिखाई दी, तो वो तमाम जो फैक्टर्स जो अभी आप जिनका विश्लेषण कर रहे थे, और ऐसे क्या कारण हुए कि तीनों ही बाजार नीचे की तरफ चल रहे थे?
देखिए, यूरोपीय बाजारों की जो सबसे बड़ी चिंता इस वक्त वो है, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि सीधा असर इस वक्त जो दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहा जाए जो चल रहे हैं, उनका सीधा असर अगर सबसे पहले किसी को झेलना पड़ेगा तो वो यूरोपीय देशों को झेलना पड़ेगा, यूरोपीय इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा, और इसीलिए यूरोपीय बाजार जो है उसको लेकर चिंताग्रस्त है, क्योंकि इससे उनकी ऑयल एंड गैस सप्लाई पे असर पड़ता है, इससे उनकी जो असेंशियल सप्लाईज है उन पर असर पड़ता है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है अगर उस पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो सबसे पहला जो झटका लगता है वो यूरोपीय देशों को, यूरोपीय इकोनॉमी को लगता है, जो कि हमने देखा पीछे जब रेड सी क्राइसिस हुई तो उसके चलते कितना दबाव जो यूरोपीय इकोनॉमी है, यूरोपीय देशों, उनको झेलना पड़ा। तो हाल फिलहाल में जो इसराइल और ईरान के बीच जो तनातनी है और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं, वो जब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं आती हैं, पीस की तरफ, शांति वार्ता की तरफ कदम बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं उतनी तेजी से, तो उसका सीधा असर यूरोपीय बाजारों पर जरूर देखने को मिलता है। और अमेरिकी बाजार से अगर कोई बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर ना मिले, जो कि आज नहीं मिला है, तो वो भी यूरोपीय जो इकोनॉमी है, यूरोपीय देशों के जो बाजार हैं, वहां उनका असर हमें साफ देखने को मिलता है।
मूविंग ऑन, इंडिया इंक सॉ इम्प्रेसिव 195 डील्स वर्थ $8.4 billion इन द मंथ ऑफ जुलाई, a 16% jump in volumes, which showcases robust investor confidence, says the Grant Thornton Bharat Deal Tracker report. According to the report, private equity contributed to 57% of the overall volumes, while mergers and acquisitions led the values with a 59% contribution. The energy and natural resources sector, along with banking and financial services, captured 46% of the total private equity investment values. On the mergers and acquisition front, significant growth with 75 deals valued at $3.2 billion, marking a 50% surge in volume and achieving the highest monthly volumes to date, the report mentioned. Further, the report stated that the manufacturing sector led in deal volumes, followed by pharma, retail, and IT, while the pharma sector dominated in terms of deal values. Now, how important is this news from the business perspective?
Very, very, very important, I would say, because, these figures clearly indicate the underlying sentiment in the Indian economy and the investors also, that they have the faith in the fundamentals of the Indian economy. It is across sectors. For example, what you're reading, I could sense, and I read the report also, some highlights, the energy and natural resources sector. This clearly points out that, policy-wise as well, the focus in the recent past, in the past few years, has been on renewable energies, natural resources as well. And, along with banking and financial services, again, the government has been pushing really hard for the reforms in financial sector, for the reforms in banking sector. So the deals happening in these sectors clearly point out that, yes, there is a positive investor sentiment. And also, I was looking at some more figures, Rajesh ji. There have been 5 IPOs in this period, raising 0.6 billion. There have been 17 QIPs as well, raising $2.4 billion. So that also is a clear indicator that everything is moving in sync. The policies, the economy, the investors, and the market.
Okay. And how much are the government policies to be lauded for such an initiative? Because we are talking about $8.4 billion in the month of July only.
Well, as I was pointing out earlier, the government's focus on certain sectors is a clear indicator to the investors as well. And it looks like the investors are taking the cue. Remember, a few years ago, the finance ministers used to call out the private sector in their budget speeches, saying that we are taking, 2 steps forward. It is time for you to go ahead and pitch in as much as well. That message seems to have, successfully been driven home with the consistency in policies in certain sectors, the focus on certain sectors as well, the renewable energy sector, the natural resources we're talking about, banking, finance, the reforms push which has been given there in those particular sectors, and the investment coming in there, that is one, M&A happening, merger and acquisitions happening in these sectors, clearly indicate that the investors have finally taken the cue from the government that yes, this is a consistent policy play which we are, looking at here. And it is safe for us to go ahead and park our money or invest our money and look for, good positive returns there.
So do you think the IIP numbers, which moderated to a 5-month low of 4.2% in June from 6.2% in May, will reflect better because the manufacturing sector led to the deals in pharma, retail, followed by pharma, retail and IT?
Well, yes, indeed, that is also something which we might see improving in the next set of data and numbers which we get. Because, and if you look at the overall numbers as well, these dips in IIP numbers do happen throughout a financial year. Should not be a cause of concern till the time there is a consistent dip in these numbers for at least two quarters, I would say.
Okay. और विशाल जी एक और खबर हम लोगों का ध्यान खींचती है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उन पर उसी तरह के रेगुलेशन लागू हो रहे हैं जिस तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर हो रहे हैं और जो वो निवेश लेते हैं उसकी भी सीलिंग निर्धारित करने की बात है और उसका जो पीरियड है जितनी अवधि के लिए ले सकते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे क्या
देखिए अमित जी कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये साफ किया था कि जो बैंकिंग सेक्टर में खासतौर पर फाइनेंस सेक्टर में अगर हम बात करें जो भी एक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं बैंक्स के अलावा चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो चाहे वो एनबीएफसीज हो उनके जो नॉर्म्स हैं उनमें वो सख्ताई बरतेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही तरह की सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन एक सेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ और नॉर्म्स हैं और दूसरे सेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ और नॉर्म्स हैं तो इसलिए क्योंकि वो काम दोनों एक ही कर रहे हैं तो जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को एक ही तरह की रेगुलेशन लूप्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा इसीलिए अब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एचएफसीज जो हैं, उनको एनबीएफसीज के पार पे लाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। और ये एक ऑनगोइंग ट्रेंड है, ऑनगोइंग पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक से पिछले चार दिनों में या पांच दिनों में इस तरह का कोई फैसला लिया है। इसकी बात आरबीआई के गवर्नर बार बार करते रहे हैं, आरबीआई की तरफ से बार बार इस तरह की बातें कही जाती रही हैं कि बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में जो रेगुलेशन है उनको और टाइट करने की जरूरत है, और इससे जो फायदा पहुंचना है वो आम उपभोक्ता को ही फायदा पहुंचना है। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो सर्विसेज दी जा रही है वो अगर एक रेगुलेटेड तरीके से सर्विसेज दी जाएंगी, यानी कि उसकी कोई जवाबदेही तय होगी, तो वो जो उपभोक्ता है उसको उसका बेनिफिट।
तो लेकिन इसकी वजह से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनकी जो फाइनेंशियल सेहत है उस पर कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा आपको?
देखिए, अगर कुछ कहीं किसी एचएफसी ने कुछ गलत किया है, कुछ छुपा के रखा है, तो उसकी सेहत पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बुक्स क्लीन है और आप सीधे तरीके से रेगुलेशंस के नॉर्म्स को और कानून को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं तो बुक्स पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
विशाल, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द ग्रैंड थॉर्नटन भारत डील ट्रैकर रिपोर्ट। There was another report which we were also discussing about the global gush of investment that has flowed to Indian debt on account of inclusion in a JP Morgan index has kick-started a phenomenon that domestic market watchers had long hoped for, greater trading liquidity across the sovereign yield curve. How do you read this in conjunction with what the Bharat Deal Tracker report has to say?
See, these are, I would say, Rajesh ji, two parallel lines moving in the same direction towards achieving the same goal. Clear indicator of the health of the economy, clear indicator of the health of the sovereign guarantee. Okay. Because if the sovereign yields are on the rise, are making right positive noises, that is clear indicator that yes, the investors do have their faith not only in the fundamentals of the economy but also the continuity of the policy decisions which are taken by the government.
Okay. Moving on, India's net direct tax collection surged by 22.5% to 6.93 lakh crore rupees from April 1 to August 11, which is expected to keep the country firmly on the path of fiscal consolidation, says the report released by the government. The net direct tax collection includes personal income tax collection of 4.47 lakh crore rupees and corporate tax collection of 2.22 lakh crore rupees. Further, the report reveals securities transaction tax clocked in 21,599 crore rupees, while other taxes, which include equalization levy and gift tax, yielded 1,617 crore rupees. On the refund front, the report said that April 1 to August 11, there is a growth of 33.5% on the gross basis. Direct tax collection grew 24% to 8.13 lakh crore rupees. And in the global crude market, Brent WTI crude are trading weak. Brent crude slid more than 0.5% and are trading at $81.85 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate is down by 0.34% and trading at $79.79 per barrel when reports last came in.
और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.08% बढ़कर 70,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं चांदी 0.82% घटकर 81,260 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। और विशाल जी, कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे सोने की प्रदर्शन पर?
देखिए, सोना और चांदी, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सोना एक हेज इंस्ट्रूमेंट है, तो आप उसको लगा लीजिए कि जिस तरह से मार्केट में तब्दीलियां देखने को मिलती है उसी हिसाब से सोने के बदलाव आता है।
जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू विशाल फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, domestic benchmark indices end weak. Sensex closes at 78,956 and Nifty settles at 24,139. India Inc. witnesses 195 deals worth more than $8 billion in July 2024. And gross direct tax grows to more than 8 lakh crore rupees from April 1 to August 2024, says a government report. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.